हरे कृष्णा।
आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष वक्त उपस्थित है, इस ग्रेस कन्हाई प्रिया प्रभु हरि। आप से काफी लोग इनको जानते होंगे, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय। प्रभु जी इज होलीनेस राधना स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और पिछले 20 सालों से इस कौन संस्था में हैं और रसाश्रम में स्थित हैं और उनका कपड़े का बिजनेस है, लेकिन पूरा परिवार भक्ति में जुड़ा हुआ है। माता जी भी साथ में आई हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। 2 बेटियां हैं इनकी, घर में गौ नेताई के ड्यूटीज हैं, बहुत अच्छे ढंग से इनकी अर्चना करते हैं और विदेशों में भी इनका जाना रहता है, लेकिन वहाँ पर भी अच्छे ढंग से पूरे नियमों का पालन करना और एक आदर्श उदाहरण उपस्थित करते हैं हमारे सामने। और इनको शास्त्रों का बड़ा अच्छा ज्ञान है और बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। हालांकि पंजाबी भाग में फर्स्ट टाइम भागवतम क्लास देंगे हमारे अपना संग।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमस्मिन् कुले कश्चिनि सत्त्वा कृपणः कुमार प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्या यो वादाता विजायते। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन वाला हो या कंजूस हो। न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा कर नहीं। संति है तीर्थ तीर्थ स्थानों में, युधि युद्ध भूमि में, चा भी अर्थिना ब्राह्मण या क्षत्रिय द्वारा, अर्थिता जिनसे मांगा गया हो, परांगखा जो प्रार्थना को ठुकरा देते हैं, ये ऐसे व्यक्ति तू निसंदेह अमन स्वीनः ऐसे क्षुद्र हृदय वाले निम्न कोटि के राजा नृप हे राजा बलि महाराज, युष्मत कुले तुम्हारे कुल में यत जिसमें यशसा अमलेन निष्कलंक कीर्ति से प्रहलाद महाराज उद्भाति उदय होता है, यथा जिस प्रकार उड्डपह चंद्रमा खे आकाश में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे राजा बलि तुम्हारे कुल में भी कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों को मांगने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान हैं। भगवत गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं, उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथां साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। मेरे लिए यह बहुत ही विनम्रता का अनुभव हो रहा है आप सभी के बीच में उपस्थित हो गए। मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि आज मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर ये एक सेवा के लिए आदेश प्रभु जी मुझे देंगे और न ही मैं इसके लिए योग्य हूँ। ये प्रभु जी की करुणा है मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए कहे जो मेरे लिए हमेशा सबसे कठिन रहता है। वो स्वयं मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी शनिवार सुबह 8 बजता है तो मैं विश्व में किसी भी कोने में क्यों ना रहूँ बस मुझे यही स्मरण आता है कि व्यास सदन में रुपणी कृष्ण प्रभु जी बैठे हैं और उनसे आज मैं भागवत श्रवण का लाभ से मैं वंचित हो गया करके वो अपने उस दुर्भाग्य पर मैं रोता हूँ क्योंकि उनके प्रवचन मेरे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने आदेश दिए तो मैंने भरकस प्रयास किया इस सेवा से अपने आप को अलग करने का, मगर उनकी कृपा है, प्रेम की कृपा, यही तो महाप्रभु की इस आंदोलन का चमत्कार है कि कैसे हम एक दूसरे से इस प्रेम की डोरी से हम बंधे हुए हैं। तो मैं हमेशा उनका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ प्रभु जी का। और आप सभी भक्तों का मैं आभारी हूँ प्रभु जी। और आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं इस महान श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है उनके भक्तों के संग उसके ऊपर जो कुछ भी मैंने गुरुजनों से श्रवण किया है उसमें मैं चर्चा करने का प्रयास कर सकूं आप सभी भक्तों की सेवा हेतु। हरे कृष्णा। तो श्री प्रभुपाद ने इतना अद्भुत हम लोगों को ये कार्यक्रम दिए हैं कि सुबह मंगला आरती से लेकर के रात्रि को शयन तक हम निरंतर रूप से कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और इसमें अनेक प्रकार की उन्होंने गतिविधियां हम लोगों को सेवाओं के रूप में प्रदान किए हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वो उद्देश्य पूरी की पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत है वो एक वैष्णव बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि 3 शब्दों में पूरा समाहित है। और ये 3 शब्द क्या है तो मति, रति और गति। कि हमारी मति, वो मति की रति भगवान श्री राधिका रमण के चरणों में लगे क्योंकि उन्हीं के चरण का वो हमारे परम गति है। और इस प्रकार से श्री प्रभुपाद ने हमें ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर दिए हैं। जय श्री राधिका रमण की, श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कि श्री प्रभुपाद ने हमें इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम के श्रवण
का दुर्लभ अवसर प्रदान किए हैं। और ये श्रीमद् भागवतम क्या है, तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे जब श्री गौरांग महाप्रभु देवानंद पंडित के संग उनका भेंट हुआ, तो गौरांग महाप्रभु देवानंद पंडित को देख के बड़े क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये निरा मूर्ख है, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, लेकिन इसको भागवत पाठ करता है लेकिन ये भागवत व्यक्ति को ये समझता नहीं है, इसलिए ये सर्वथा अयोग्य व्यक्ति है। ये श्रीमद् भागवतम क्या है कि ये जैसे चार वेद हैं उसको सुखदेव गोस्वामी मंथन कर रहे हैं और मंथन के परिणाम स्वरूप उससे जो मक्खन प्रकट हो रहा है वो श्रीमद् भागवतम है और उस मक्खन का पान महाराज परिचित कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम मुझसे अभिन्न है और कृष्ण ने बड़ी कृपा पूर्वक व्यास देव के रूप में अवतार होकर के इस श्रीमद् भागवतम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। जो परमहंस संहिता है और जो भी व्यक्ति मुझ में, मेरे भक्तों में और भागवत में भेद करेगा वो कोटि कोटि जन्मों से नरकों में पड़ा रहेगा। तो सोचिए हम लोगों को ये कितना विशेष कृपा मिली है श्री प्रभुपाद की कि हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का, अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें प्रतिदिन ये अवसर मिलता है श्री प्रभुपाद की कृपा से। और आज के श्लोक में जैसे कि ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, भगवान वामन देव बोल रहे हैं कि हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों को मांगने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो महाराज बलि के पास में भगवान वामनदेव भिक्षा मांगने आए हैं, उन्होंने एक विशेष अवतार लिए हैं। हाँ, ये यहाँ पर हमें थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान देवताओं के प्रति कुछ विशेष कृपा कर रहे हैं और चूंकि देवताओं का राज्य को महाराज बलि ने हड़प लिए हैं उनको युद्ध में पराजित करके, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवता लोग पराजित हो गए और बलि जो असुर हैं वो लोग बलशाली हो गए, उनके अधिकार में पूरा का पूरा साम्राज्य आ गया है। अब यहाँ पर भगवान वामन के रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और अदिति के प्रार्थना के फलस्वरूप अपने पुत्रों इंद्र आदि देवताओं को वो राज्य को वापस दिलाने के लिए, अपने भाइयों का वो राज्य जो है वो वापस दिलाने के लिए महाराज बलि के पास में पधारे हैं। इसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रसंग छठे स्कंद में आता है कि महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे राजा, हे महाराज परीक्षित, ये कैसा विचित्र बात है कि जो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मम भक्त्या महिते तेषु चाप्यहम्, कि जो भगवान कह रहे हैं न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो जब भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं तो फिर ये पक्षपात का प्रश्न क्यों उठ गया? तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुन के सुखदेव गोस्वामी उनको बधाई देते हैं कि तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया कि भगवान वास्तव में किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद इतने सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे पक्षपात नहीं करते हैं। हमारे दृष्टिकोण में हमें समझ में आता है कि भगवान यहाँ पर पक्षपात करने के लिए आए हैं, वो देवता और असुरों में भेद बरत रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक गुणों के अधीन एक बद्ध जीव उनको ये महसूस होता है कि भगवान जो है पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि वो भौतिक गुणों के अधीन है। लेकिन भगवान कौन है? वो निर्गुण है, वो त्रिगुणातीत है। वो तो उनमें ऐसा भेदभाव का प्रश्न उठता ही नहीं है। वो मारे या रखें, दोनों में ही उनकी कृपा निहित है जीवात्मा के लिए। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित के इस शंका का समाधान करते हैं। और ये कुल जहाँ पर भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए हैं, बलि महाराज के सम्मुख खड़े हैं, ये इतना यशस्वी दैत्य कुल है। भगवान ने एक नहीं पूरे हैट्रिक मार दिए इस कुल के लिए। तीन अवतार लिए उन्होंने, वराहदेव से शुरू होकर के नरसिंहदेव और अब वामन देव। तो ये पहला हैट्रिक है जो भगवान ने हैट्रिक लगाया। और तो और ये कुल इतना यशस्वी है कि हमें इस कुल ने दो महाजन दिए, महाराज प्रहलाद जो कि श्रवणम के आचार्य हैं, और महाराज बलि जो शरणागति के ये आचार्य हैं। इतना यशस्वी कुल है ये दोनों महाजन हैं। 12 महाजन में से दो महाजन इसी परिवार से आ रहे हैं। तो जब श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन परिक्रमा करते हुए वृंदावन परिक्रमा के लिए पधारे, तो वो पहले मथुरा पहुंचे, और मथुरा में वो केशव जी मंदिर में गए दर्शन के लिए। वो इतने भाव विभोर होकर के वो कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पर एक ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण था, सरोड़िया ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण महाप्रभु के इस अद्भुत कीर्तन को देख करके भाव विभोर हो गया। और जितने भी ब्रजवासी वहां पर थे वो सारे के सारे भाव विभोर होकर के महाप्रभु के संग जोर जोर से कीर्तन में गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब महाप्रभु उस ब्राह्मण को देखे, सरोड़िया ब्राह्मण को भाव विभोर होकर के कीर्तन कर रहा है, तो उनको वो एकांत में लेकर के आए, उनका हाथ पकड़ करके, और उनको बोले कि तुम एक तो बूढ़े हो मगर तुम्हें इतनी भक्ति भरी पड़े तुम्हारे हृदय में, कहाँ से मिली तुम्हें भक्ति? है ऐसा अद्भुत भक्ति मैंने किसी के जीव के हृदय में बहुत कम देखे हैं ये लक्षण। तब वो सरोड़िया ब्राह्मण बोलते हैं कि श्रीपद माधवेंद्रपुरी वर्षों पूर्व यहाँ आए थे और ऐसे ही वो अद्भुत कीर्तन कर रहे थे, और उस माधवेंद्रपुरी पाद ने मुझ पर अत्यंत कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए और मेरे घर में आकर के उन्होंने प्रसाद ग्रहण किए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी आज आपको देख करके मुझे माधवेंद्रपुरी पाद की स्मरण हो आया। निसंदेह रूप से आपका और उनमें कुछ न कुछ तो संबंध है। तब महाप्रभु के साथ जो उनके सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, वो महाप्रभु को परिचय देते हुए कहते हैं कि हाँ, ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्रीपाद ईश्वरपुरी हैं, उनके शिष्य हैं। और जब महाप्रभु को पता चलता है कि माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य सरोड़िया ब्राह्मण हैं, तो वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ते हैं उनको प्रणाम करने के। वो ब्राह्मण जो है लज्जित हो जाता है, बोलते कि आप सन्यासी हो, आप मुझे क्यों प्रणाम दे रहे हैं? तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप मेरे गुरु के तुल्य हैं और आपको प्रणाम करना ये मेरा सेवा है, आप मेरा कर्तव्य है। तब वो ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं और बलभद्र भट्टाचार्य को कहते हैं कि आप महाप्रभु के लिए भोग बनाइए। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप क्यों नहीं बनाएंगे, जब आपके हाथों से माधवेंद्रपुरी पाद ने प्रसाद ग्रहण किए हैं तो मुझे भी कोई उसमें संकोच नहीं है। वो ब्राह्मण इसके पूर्व कहते हैं कि मैं तो एक निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ और आप सन्यासी हो, तो ये मैं अयोग्य हूँ इस सेवा के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि यदि माधवेंद्रपुरी पाद ने आपके हाथों से प्रसाद ग्रहण किए हैं तो फिर ये मैं फिर विचार कर ही नहीं सकता कि मैं कैसे आपके हाथों से प्रसाद ग्रहण न करूँ। मैं निसंदेह रूप से आपके हाथों के मैंने प्रसाद ग्रहण करूँगा। और तब महाप्रभु एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों का जितना जो ज्ञान है उस ज्ञान को स्वाध्याय करके अध्ययन करके उसको समझ पाना एक बद्ध जीव के लिए बड़ा कठिन है। लेकिन ये जो दिव्य ग्रंथ है भागवत है, वो भागवत न केवल एक है बल्कि वो दो है, एक ग्रंथ भागवत और एक जो है व्यक्ति भागवत। और ऐसे व्यक्तियों के जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ के सार को अपने हृदय में उन्होंने उतार रखे हैं, जब उनके आचरण को हम देखते हैं तब हमें शास्त्रों का जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। ये वो महाजन है जो अपने आचरण से हमें सिखलाते हैं कि कैसे हम भगवान के निरंतर रूप से अग्रसर हो सके। तो ऐसे ही ये दो महाजन हैं इस महान असुर परिवार में, महाराज प्रहलाद और महाराज बलि, जिनके सम्मुख आज वामन देव भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बुक जो कृष्ण पुस्तक है उसमें प्रभुपाद 5वें अध्याय में बहुत सुंदर बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन अपनी आयु को। और वो है कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान करें, अपने शरीर को अंदर और बाहर से स्वच्छ करें और 10 प्रकार के संस्कारों का पालन करें। और धन शुद्धि करना भी आवश्यक है। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि तप से, अर्चा विग्रह की सेवा से और दान देकर, ये 3 प्रकार की क्रिया करके हम जो है अपने अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, अपने धन को शुद्ध करते हैं और अपने आप को, अपने आत्मा को शुद्ध कैसे करते हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। ये 3 विधि प्रभुपाद बताते हैं। और इसी प्रकार से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दान के प्रकार बताते हैं। 17वें अध्याय में 20-21-22 श्लोक में भगवान कितने प्रकार के दान होते हैं इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो पहला दान होता है तमोगुण का, तामसिक लोग जो दान करते हैं जिसमें गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत व्यक्ति को गलत उद्देश्य के लिए दान दिया जाता है जिसका परिणाम गलत होता है। दूसरा प्रकार है राजसिक दान। ये दान जो है लोग इसलिए देते हैं जिससे उनका अपना नाम हो, उनकी प्रसिद्धि हो, या परोपकार का कार्य करने के लिए देते हैं। एक बार यहाँ पर इसी मंदिर में सारा महाप्रभु यहाँ पर यहीं बैठ करके कथा सुना रहे थे और वो इतने सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे थे एक व्यक्ति के दान के बारे में। किसी मंदिर में कीर्तन चल रहा था, गर्मी का महीना था और कीर्तन मंडली जो है ठीक पंखे के नीचे बैठे हुए थे, पंखे का हवा, पंखा जोर से चल रहा था। वो दानी व्यक्ति आया मंदिर में और देखा सारे लोग कीर्तन में झूम रहे हैं, तो उसने आकर के पंखा बंद कर दिया। जब पंखा रुक गया तो सारे लोग गर्मी से परेशान हो गए, पंखा क्यों बंद हो गया, वो कीर्तन मंडली देखने लगे। तो वो दानी व्यक्ति बोलता है, अरे भाई जिस पंखे के नीचे बैठे हो जरा सिर ऊपर उठा करके देखो कि वो उसमें दानकर्ता का नाम किसका लिखा हुआ है, वो दानी मैं ही हूं। तो ऐसी भावनाओं से जो दान दिया जाता है उसका हमें समुचित लाभ नहीं होता है, जिसमें हम अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना करते हैं। लेकिन भगवान एक तीसरे प्रकार के दान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो तीसरा दान है वो सत्वगुण में होता है, जिसमें दान को सही व्यक्ति को सही समय पर सही उद्देश्य के लिए दिया जाता है जिसका परिणाम सही होता है इसमें। लेकिन ये जो दान है ये तीनों प्रकार के जो दान है वो हमें, ये तीनों प्रकार के जो दान है ये हमें इस संसार से बांध के रखते हैं, हमें फिर से कर्म बंधन में बांध देते हैं। तो फिर कैसा दान करना चाहिए जो हमें कर्म बंधन से बाहर निकाल सके? तो वो है दिव्य दान, चक्षु दान देरे से जन्मे जन्मे प्रभु से। ये जो दिव्य दान है वो हमें किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन से नहीं बांधता है। और ये जो दिव्य दान क्या है कि किसी दूसरे जीव को कृष्ण भक्ति प्रदान करना, उनको भगवान के संदेश को बताना कि कैसे वो भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं, और इस प्रकार के दान करने से जो दाता है और जो प्राप्त करता है दोनों के दोनों इस भवबंधन से छूट जाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जब श्री प्रभुपाद को अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने अपने हाथ की उंगली में जो एक सोने की अंगूठी पहनी थी वो निकाल करके तमाल कृष्ण महाराज को दिए और बोले कि आप इस अंगूठी को जॉर्ज हैरिसन को दे देना। जब जॉर्ज हैरिसन को यह अंगूठी मिली तो वो एकदम भावुक हो उठे। और इसके पीछे एक रहस्य क्या है कि जब श्री प्रभुपाद को सर्वाधिक अधिक आवश्यकता के धन की इसी कृष्ण पुस्तक का प्रकाशन करने के लिए उन दिनों में जॉर्ज हैरिसन ने $19,000 ये दान दिए थे श्री प्रभुपाद को, और प्रभुपाद का हृदय उस कृतज्ञता से भरा हुआ था कि उन्होंने इस आंदोलन को प्रचार प्रसारित करने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक वो अकेला व्यक्ति जिसने अपने बलबूते पर प्रभुपाद की कृपा को लेकर के पूरे विश्व में इस कृष्ण भावनामित आंदोलन को इतनी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने उन दिनों में जितने भी भक्त थे अधिकांश लोग जॉर्ज हैरिसन से प्रभावित होकर के कृष्ण भावनामित में जुड़ गए। इतनी महत्वपूर्ण सेवा की थी तो उनके गुरु श्री प्रभुपाद वो कृतज्ञता से भर उठे। वो ऐसे ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के एक बहुत ही समर्पित शिष्य थे श्रीपाद भक्ति रंजन जगबंधु प्रभु। जगबंधु प्रभु ईस्ट बंगाल से आए थे कलकत्ता। उनकी दो पत्नियां थी, बड़ी गरीबी की अवस्था से गुजर करके वो बड़े धनी व्यक्ति बने और वो पहले देवी के उपासक थे, लेकिन जब वो वैष्णव के संपर्क में आए तो उनको बड़ा अच्छा लगा और वो 3-4 साल तक वो वैष्णव का संग करते रहे, परखते रहे कि क्या ये लोग दूसरे साधुओं की तरह ढोंगी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। लेकिन जब वो आश्वस्त हो गए तब फिर अंततः वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, जिनका कल आविर्भाव भी है, उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और उनके जो संपर्क सूत्र थे जतिशेखर प्रभु नहीं कुंज बिहारी प्रभु जो कि प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, तो कुंज बिहारी प्रभु को वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तरह ही उनके आदर दिया करते थे। तो एक दिन वो कुंज बिहारी प्रभु के पास आए और उनको कहने लगे कि मैं प्रभुपाद की कुछ सेवा करना चाहता हूँ और वो सेवा ऐसी होनी चाहिए जो मेरी क्षमता के अनुरूप हो। तब कुंज बिहारी प्रभु ने उनको सुझाव दिया कि अभी हम लोग उल्टा डंग जंक्शन स्थित जो इस मठ में निवास कर रहे हैं और यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर यहाँ पर स्थान जो छोटा पड़ते जा रहा है, तो क्यों नहीं आप कोई ऐसा नया मठ बना करके गुरुदेव को अर्पित करें जहाँ पर हम अच्छे ढंग से प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सकें। उनको ये सुझाव बड़ा पसंद आया, उन्होंने अपने गुरु महाराज से अनुमति ली और उसके बाद उन्होंने मठ का निर्माण, जो आज बाग बाजार कलकत्ता में जो स्थित है, ये मठ का निर्माण उन्होंने किया। और उस मठ के निर्माण में करते करते उन्होंने अपनी सारी की सारी संपत्ति उसमें लगा दी। कोई कहते हैं कि वो कंगाल हो गए थे, जिसकी उन्होंने कभी परवाह भी नहीं की। सारी संपत्ति उन्होंने लगा दी और उस कंगाली की अवस्था में अपने गुरुदेव को कहते हैं कि जब ये मठ बन जाएगा तो मेरे को किसी कोने में एक चारपाई दे दीजिएगा, वहीं पर मैं सोया करूंगा। ये उनकी अपने गुरु के प्रति समर्पण और सेवा की भावना थी। अपने सारी इतनी मेहनत से अर्जित की धन को उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रचार में अर्पित कर दिया उन्होंने। और जब उनका देहांत हुआ तो स्वयं उनके गुरु महाराज उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनको कृष्ण कथा सुना रहे थे और वहीं श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इतने भावुक हो गए अपने उस शिष्य के इस महान दान से, जिनके कारण से उनको इतना बड़ा मठ मिला जिसके जरिए वो महाप्रभु के सांदर्भ को चारों दिशाओं में प्रचारित करने में इतने समर्थ उनको एक सहयोग मिला। इतने कृतज्ञता से भर उठे वो अपने शिष्य के कि जहां कहीं पर भी वो जाते तो निसंदेह रूप से अपने उस शिष्य का गुणगान किया करते थे। तो ये ऐसा दान जो हमें इस जगत से पार ले जाता है। ऐसे ही मुंबई में एक ड्यूटी है श्यामचरण प्रभु, उनकी माता का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हुआ। श्यामचरण प्रभु एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त हैं जिन्होंने बंबई में आईआईटी में प्रचार में अपनी बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है। तो इनकी माता भी दीक्षित हैं, दीक्षित थीं, और इनकी माता का जब अंतिम समय आया तो वृंदावन से राधा श्याम सुंदर की श्रीमती राधा रानी का जो कंठाहार है किसी भक्त ने ला करके उनको राधा रानी की कृपा प्रदान की और उसको धारण करके वो वापस भगवत धाम चली गई। लेकिन बाद में पता चला कि कैसे भगवान अपने प्रति किए गए अल्प सेवा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और उनके साथ रहते हैं। तो बाद में पता चला कि जब यही माता जी अपने अंतिम समय के कुछ समय पूर्व जब वृंदावन आई थी तो उन्होंने अपने सारे जेवरों को उन्होंने राधा रानी के लिए वहां पर दान दे दिए थे। और वही राधा रानी उनके अंतिम समय में उनको अपनी कृपा देने के लिए साक्षात वहां पर पहुंच गई। तो ये कितना बड़ा इंश्योरेंस प्रभुपाद हम लोगों को करके दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ भी इस संस्था के लिए आप करेंगे तो इसमें आपको लाभ ही लाभ है, इस पुस्तक वितरण में, इस ज्ञान दिव्य ज्ञान को प्रसारित करने में। और हमारा ये मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है। एक बार मैं राधा देश में एक श्री प्रभुपाद के शिष्य उनसे मैं मिला तो उन्होंने मुझे मेरा परिचय पूछे तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली से। बोले किस मंदिर से हो? मैं बोला पंजाबी बाग मंदिर से। तो बड़ी प्रसन्न हो, उनके आंखें एकदम बिल्कुल जल उठी, बोलती अपने पुजारी से बोलना कि मुझे तुम्हारे दोनों छोरे बहुत सुंदर दिखते हैं। मैं रोज इंटरनेट पर दर्शन करती हूँ तो मुझे सुन के इतनी प्रसन्नता हो गई कि कहाँ कोई विश्व के दूसरे कोने में है वो माता जी और वहाँ से बैठ करके इस मंदिर के कृष्ण बलराम का दर्शन करके आनंद को प्राप्त कर रही हूँ। तो ये हम सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है और इस यहाँ के हमारे पुजारियों का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि वो विश्व के हरेक लोगों को कृष्ण बलराम की कृपा की ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम भी प्रयास करते हैं, हमारे दुकान में हर वर्ष हम लोग करीब 1500 भगवद गीता रखते हैं, जो भी ग्राहक आते हैं उनको हम लोग वितरित करते हैं, वहाँ पर उनको जो भी सामान लेते हैं उसके बदले में। तो यहाँ पर वामन देव जो भिक्षा मांगने आए हैं महाराज बलि से, तो ये प्राचीन काल में ये एक ऐसा वैदिक संस्कृति है कि ब्राह्मण लोग कभी भी धन अर्जित नहीं करते थे, वो हमेशा निर्धन रहा करते थे। इसके बारे में बहुत सुंदर प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं कि कैसे ब्राह्मण जो है हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, विशेष रूप से क्षत्रिय और वैश्य पर। तो ये जो वर्णाश्रम है उसमें ब्राह्मण जो है सर्वोच्च है और इन ब्राह्मणों का कार्य क्या है? पठन पाठन यज्ञ याजन दान प्रतिग्रह, कि वो वेदों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को वेदों का ज्ञान जो है बांटते हैं, उनको उनको भक्ति में लगाते हैं। और यदि हमें भक्ति करना है तो हम यदि ऐश्वर्य से घिरे रहेंगे तो हम उससे प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों को ये ऐश्वर्य संकलित करने के लिए मनाही किया गया है जिससे कि वो इससे प्रभावित ना हो और उनका ध्यान भगवान के चरणों में हमेशा लगा रहे। तो ये ब्राह्मण कृपा करने के लिए गृहस्थों पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वो भिखारी नहीं है, वो तो सर्वोच्च धनी है। श्री प्रभुपाद कोई भिखारी के रूप में नहीं गए थे यहाँ से भारत को छोड़ करके अमेरिका, वो सर्वोच्च धन था उनके हृदय में कृष्ण प्रेम का, उस धन को वो बांटने गए थे। उनको किसी व्यक्ति ने कहा भी कि आप यहाँ क्या करने आए, तो बोलते हैं कि जो चीज़ तुम भूल गए उसको मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूँ और वो है कृष्ण प्रेम। तो ये श्री प्रभुपाद जो उस परम करुणा के अवतार हैं श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के, जिनकी कृपा को लेकर के वो इस संसार में प्रकट हुए हम सबको प्रदान करने के लिए। और इस लीला में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान की इस लीला से हमें सीखने को मिलती है, और वो है कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हारा वंश तो प्रह्लाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो भगवान नरसिंहदेव अवतार लिए केवल उनके लिए, एकदम एक्सक्लूसिव अवतार था, और ये वामन अवतार लिए हैं वो भी एक्सक्लूसिव अवतार है। तो इस अवतार में भी अपने उस परम भक्त प्रह्लाद का गुणगान करने से वो चूक नहीं रहे हैं। इसी प्रसंग में सातवें स्कंद में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जब चारु कुमार जय और विजय को श्राप देते हैं, तब भगवान विष्णु वैकुंठपति वहां पर प्रकट होते हैं और अपने सेवकों जय विजय के प्रति क्षमा याचना करते हुए उन चारों कुमारों को कहते हैं कि मेरे भक्त जो है वो मेरे चरणों की भक्ति करते हैं और उनके कारण से ही मेरे चरणों में इतनी शक्ति समाहित है कि कोई भी मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वह निष्पाप हो जाता है। और तो और इन मेरे भक्तों के कारण से ही मेरे चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी देवी से तत्पर रहती हैं, जिनके प्रति मैं कभी आसक्त नहीं होता, जबकि सारे संसार के लोग उसी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान का कितना सुंदर अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहे कि उनके भक्त उनके कितने प्रिय हैं, उनके प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। और उन्हीं प्रह्लाद महाराज का यहाँ पर भगवान जो है इस वामन अवतार में भी गुणगान करने से चूक नहीं रहे हैं। और चूंकि बलि महाराज एक तरह से भटक गए थे भक्ति के मार्ग से, वो जो है भोग मार्ग में प्रलिप्त हो गए थे, तो उनका संबंध प्रह्लाद महाराज से होने के कारण से भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके पास में याचना मांगने के लिए, उनको अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। और अंततः उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं, वो सब कुछ समर्पित करके भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आश्वासन भगवान हम सबको दे रहे हैं कि भक्ति में हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए निसंदेह रूप से उपस्थित है। और तो और जो कोई भी हमारे साथ संबंधित है उस व्यक्ति को भी भगवान अपनी कृपा देने के लिए उपस्थित है। ये इस प्रसंग से हम इतना महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का जो साला था, पत्नी का भाई अमोघ, वो इतना द्वेष से भर उठा महाप्रभु के प्रति कि उनके प्रति अपराध किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो मरणासन्न अवस्था में आ गया। और तो और सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी वो अपने बेटी के भाग्य पर रोती है, बोलती कि इसके बजाय तो तुम विधवा होती, किसी माता के लिए इतना कठोर शब्द अपने बेटी के लिए कहना असंभव है। लेकिन इनका हृदय महाप्रभु के प्रेम से इतना अप्लावित था कि बोलते कि तुमको तो विधवा हो जाना चाहिए था बजाय इस प्रकार के पति होने का तुम्हारा। तो महाप्रभु जाते हैं, तो इनको पता जब चलता है कि अमोक मरणासन्न है, और जाकर के अमोक के हृदय में हाथ रख के, सिर में हाथ रख के उनको बोलते कि क्यों तुम्हारा हृदय इतना द्वेष से भरा हुआ है, इस द्वेष को त्याग दो तुम। और इस प्रकार से उनके हृदय में कृष्ण प्रेम भर देते हैं। क्यों करते हैं महाप्रभु अपनी इस कृपा को, क्यों देते हैं उस अमोक को? क्योंकि उनका संबंध उनके प्रिय भक्त सार्वभौम के साथ में था। तो ये भक्ति का, जब परिवार में कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है तो उसका लाभ सारे परिवार को मिलता है, सारे परिवार के सदस्यों को मिलता है। और तो और जो कोई भी व्यक्ति उस भक्त से संबंधित है, उस भक्त को भी भगवान अपनी कृपा देने से, अपनी कृपा छाए से उनको वंचित नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भगवान जो है अपनी लीला का विस्तार किस प्रकार से भक्त के माध्यम से करते हैं इस लीला से हम समझ सकते हैं। और भगवान आगे भगवद गीता में कहते हैं कि न हम वेद न तपसा न दाने न चेय सख्या एवं विधो दृष्टुम दृष्टावान अस्मि माम यथा। ये 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान इस दान के विषय में ही कह रहे हैं कि कैसे तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से न कठिन तपस्या से न दान से न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो दान से भी हम भगवान के इस स्वरूप को जान नहीं सकते। तो अगले श्लोक में भगवान आगे बता रहे कि कैसे उनको जाना जा सकता है। भक्त्या त्वनन्या भक्ता त्वनन्याया सख्या अहम वेदम विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के इस रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने यहाँ पर दान और पूजा तीनों को स्वीकार कर दिया और बता रहे कि कैसे केवल अनन्य भक्ति से उनको जाना जा सकता है। और यही अनन्य भक्ति प्रदान करने के लिए वही श्री कृष्ण श्री गौर सुंदर भगवान के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। हाँ, वो सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े करुणावान हैं वो। और वो ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के, नमो महावत अन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए इस संसार में प्रकट हुए। और उनकी करुणा की सीमा हम समझ नहीं सकते, इतनी असीमित है उनकी करुणा की सीमा कि उसके लिए उन्होंने अपने उस विधवा माता, अपनी पत्नी और अपने सारे भक्तों को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने। ठीक उसी प्रकार से उसी करुणा को हृदय में धारण करके कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद उस करुणा को हम सबको प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में यहाँ पर पधारे, हम सबको अपनी करुणा भगवान की करुणा को देने के लिए। तो सबसे बड़े दानी तो वही है, हम जो कुछ भी भगवान को अर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमें उन्हीं से मिला है, उसको हम उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम उनके प्राप्त वस्तु को जब हम उनको अर्पित करते हैं तो वही हमारे इस दान की पराकाष्ठा है। और वैसे भी हमारे पास है क्या जो हम उनको अर्पित कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है हमारा। एक बार बहुत समय पहले प्रभु जी अपने सुंदर प्रवचन में बता रहे थे कि हम क्या दे सकते हैं भगवान को। जो कुछ भी हमें हमारे जीवन में उपस्थित है वो हमारे अपने द्वारा निर्मित नहीं है, ना हमारा घर, ना वो रॉ मटेरियल, ना हमारी पत्नी, ना हमारे बच्चे, ना हमारा व्यापार, ना हमारा बिजनेस, कुछ भी नहीं है हमारा। हमारे यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। हाँ, ये तो 24 तत्वों से बना है, हमने तो इसको बनाया नहीं है लेबोरेटरी में। यदि लेबोरेटरी में बनाएंगे भी तो वहाँ का रॉ मटेरियल तो हमें बाहर से लाना पड़ेगा, और वो बाहर के प्रकृति से हम लेकर के आएंगे। मन बुद्धि अहंकार वो भी नहीं है हमारा, और आत्मा वो भी नहीं है हमारा। वो तो ममय वंश जीव लोग भगवान ने पहले ही बोल दिए कि आत्मा तो मेरा अंश है। हमारे पास केवल एक चीज है। एक बार श्री प्रभुपाद वृंदावन से प्रस्थान कर रहे थे, सारे भक्त उनके इर्द गिर्द थे। प्रभुपाद मंदिर से निकले और कार में आके बैठ गए। कार का दरवाजा बंद करने ही वाले थे, एक भक्त दौड़ते हुए जोर से चिल्लाते हुए आया, प्रभुपाद। सारे भक्त स्तंभ रह गए, कौन व्यक्ति ऐसा जोर से चिल्ला रहा है। सबने पीछे मुड़ के देखा, एक भक्त तेजी से भागते हुए आ रहा है प्रभुपाद की ओर। प्रभुपाद हाथ में पकड़े थे दरवाजा को कार का बंद करने के लिए। दरवाजे और प्रभुपाद के बीच में वो भक्त आकर के खड़ा हो गया। प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, कैसे मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ। तो सारे भक्त बड़े ध्यान से सुनने लगे कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं, अब कौन सा शास्त्र का उदाहरण देकर के बोलेंगे। तो प्रभुपाद ने सारे शास्त्रों का निचोड़ एक शब्द में उनको सुना दिया, बोले डिजायर, इच्छा। यदि आप में इच्छा होगी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इच्छा है जो हम भगवान की ओर समर्पित कर सकते हैं कि हे भगवान, बहुत हो चुका इस संसार में भटकते हुए, आपसे अलग होकर के इस संसार में मैं नाना प्रकार के तापों को मैं भोग रहा हूँ, पीड़ित हूँ उन तापों से, लेकिन अब बस अब मैं आपकी ओर आना चाहता हूँ। और जब हम ऐसी अपनी इच्छा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो देखते हैं कि कैसे भगवान हमारे जीवन के इर्द गिर्द इतने सुंदर प्रकार से उनके भक्तों का एक नेटवर्क बना देते हैं, उस नेटवर्क का जो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ये इतना सुंदर भक्तों का, वैष्णवों का ये नेटवर्क है यहाँ पर। इस नेटवर्क से हम यदि बच के जाना भी चाहें तो भी वो नेटवर्क से हम दूर नहीं जा सकते। तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से रूपन किशोर प्रभु जी का, जो हमेशा अपने इस नेटवर्क की छाया में मुझे आश्रय देते रहते हैं। हरे कृष्ण। कुछ त्रुटि कुछ संशोधन हो तो किसी को कुछ टिप्पणी कुछ जी। प्रभु जी ने मुझे आमंत्रित करके मुझे अहंकारी से विनम्र कर दिया कि तुम जितना सुनते हो उसका पालन करते हो कि नहीं। यहाँ पर बैठ करके आप जो है भगवान के सामने, वैष्णव के सामने आप जो है उसको असत्य नहीं कह सकते, और अपने आप मेरा जो भ्रम है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, प्रभु जी ने पहले मेरे परिचय में बताया कि बड़े विद्वान हैं, जबकि मैं विद्वान बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा दो विषयों से दूर भागता था, एक तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं साइंस के स्टूडेंट रहा और मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेरा खुद का केमिकल बन जाता था, मेरे माइंड में केमिकल रिएक्शन होता था, और दूसरा संस्कृत से। लेकिन जीवन की विडंबना देखिए कि मैं प्रभुपाद की संस्था से जुड़ा और यहाँ पर केवल संस्कृत ही संस्कृत है। 700 श्लोक की भगवद गीता, 18,000 श्लोक की श्रीमद भागवतम, और मेरे लिए भयंकर चुनौती है ये संस्कृत के श्लोकों को दोहराना, उसको पढ़ पाना। बड़ा अज्ञानी हूँ, लेकिन प्रभु जी ने इतने प्रेम से मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बोले कि ये विद्वान है। आप लोगों को पता चल गया कि मैं कितना निरामूर्ख हूँ, कि श्लोकों का उच्चारण भी करना नहीं आता। तो ये है, वो मुझे विनम्र बना, विनम्र बना, क्योंकि बिना प्रभु जी का बहुत सुंदर जब पिछले गौर पूर्णिमा में लेक्चर दिए थे, एक बात बहुत उन्होंने इतनी सुंदर दिव्य कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, और वो बात कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिना विनम्र हुए हम भगवत धाम नहीं जा सकते, विनम्र बनना ही पड़ेगा। त्रिणादपि सुनिश्चयेन तरोरपि सहिष्णुः, अमानिना मान देन कीर्तनी सदा हरे। एक महाप्रभु ऐसे नहीं बोले श्लोक को। और कल बहुत सुंदर शिवराम प्रभु बोल रहे थे कि विनम्र बनने में नुकसान क्या है, ये विनम्रता इतनी प्रभावकारी है, इतनी प्रभावशाली है कि यदि आप भक्ति नहीं भी करते हैं और भक्तों के बीच रहते हैं तो वो भी आपसे आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यदि आप विनम्र बनते हैं, भक्त बन करके, तो भगवान आपसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को विनम्र तो बनना ही पड़ेगा, और ऐसे हमारे मार्गदर्शन प्रभु जी के रूप में उपस्थित हैं, वो हमें सिखाएंगे कैसे विनम्र बनना है करके। वो खुद विनम्र है, हमेशा उनका प्रवचन इन विनम्रता भरे उपदेशों से भरा रहता है। क्या चीज इसलिए तो प्रभुपाद ने यह नित्यम भागवत सेवा की पद्धति दी है हमें, जैसे हम स्थित प्रज्ञ क्या उससे भी ऊपर उठ करके वैष्णव बन सके। ये सबसे बड़ा हमारा उपाधि है स्थित प्रज्ञ, तो एक उपाधि जिसको रूप गोस्वामी में पहले बोलते त्याग दो उसको, बल्कि आप बनो वैष्णव। तो आइए निरंतर आप भागवत कक्षा में श्रवण करके भक्तों का संग करिए, आपको पूरा संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्ण।